ओम शांति। श्रेष्ठतम शुभ भावना पाने के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना पड़ता है। दीदी जैसे महानुभव से सुनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे दीदी जी जिनके दिल से घड़ी घड़ी निकलता है मेरा बाबा मेरा बाबा। हम सभी गाते हैं मेरा बाबा मैं बाबा का नंबर वार है, लेकिन दीदी जी के दिल से मन से मुख से जीवन से कैसे मेरा बाबा निकलता है वो तो उनके द्वारा ही हम सुनेंगे। बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल विषय आज लेकर हम सभी के समक्ष आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदी जी मुंबई से पधारे हैं। हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। विषय है मैं मेरा और मेरा बाबा। दोनों बातें अलग अलग है, मैं मेरा और मेरा बाबा, वो तो स्पष्टीकरण से उनसे ही सुनेंगे। दीदी को देखते से ही ऐसे महसूस होता है कि उनको देखते रहे उनसे सुनते रहे वो तो एक घंटा अभी सुनने का परम सौभाग्य हमें ड्रामा अनुसार मिला है। मुरली वाले दीदी और दिल से मेरा बाबा कहने वाले दीदी ऐसी उनको प्रसिद्धि मिली है। पीस ऑफ माइंड चैनल पर रोज दीदी की मुरली रहती है इसलिए मुरली वाले दीदी उनको कहते हैं। टीचर्स के लिए 3 किताबें भी बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, उसमें संपूर्ण दीदी जी के जीवन में जो कुछ उन्होंने पाया जो कुछ पुरुषार्थ किया उसकी पराकाष्ठा हम सभी के सामने आती है। सहिष्णुता की मूर्ति निर्विकारिता और निरअहंकारिता की गुणधारिणी ज्ञान सुनो की स्वधारणा सुगंध से सभी आत्माओं को सुगंधित करने वाले प्रेरणा स्रोत राजयोगिनी नलिनी दीदी जी है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा बाबा के साकार सानिध्य का आपने अनुभव किया है। मीडिया विंग की सेवा में आप सदैव अपना लक्ष्य केंद्रित करते रहते हैं। आपकी सेवाओं का बहुत बड़ा विस्तार है, खास करके मुंबई में घाटकोपर धुलिया डोंडा ईसा आदि आदि बहुत सारे स्थानों पर दीदी के सेवा का विस्तार फैला है। केवल सेवाओं का ही विस्तार नहीं है तो पालना की जो भी बातें सुनते हैं भाई बहनों से नलिनी दीदी के पालना की वो बहुत ही सुनने जैसी और कुछ अनुभव कराने जैसी बातें होती हैं। तो हम सभी भी दीदी जी से सुनेंगे बहुत सुंदर प्रैक्टिकल विषय पर मैं मेरा और मेरा बाबा। आदरणीय नलिनी दीदी जी ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा जिनकी अपरम अपार महिमा है वो महिमा न सिर्फ हम बच्चे ही करते हैं परंतु भक्ति मार्ग के अंदर भी जो भी भक्त और अनन्य भक्त हैं वह भी करते न सिर्फ इतना लेकिन शास्त्र लिखने वाले जो भी ऋषि मुनि और शास्त्रज्ञ उन्होंने भी अपने शास्त्रों के अंदर प्रभु की अपरम अपार महिमा की है। ना सिर्फ इतना, लेकिन वेदों में और पुराणों में भी परमपिता परमात्मा की अपरम अपार महिमा का वर्णन है। ना सिर्फ इतना, लेकिन सर्व ज्ञान की अधिष्ठात्री कौन, ज्ञान की देवी कौन है, जानते हो सभी? माँ सरस्वती, माँ शारदा। और हम बच्चों के लिए हमारी प्यारी मातेश्वरी मम्मा। तो ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती ने जो प्रभु की प्रैक्टिकल महिमा अपने जीवन के अंदर लाई, उसका गायन शास्त्र लिखने वालों ने, वेदों ने, पुराणों ने माँ सरस्वती के नाम से संस्कृत में किया, जो श्लोक भी बहुत प्रचलित है, असित गिरिसम सैत कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहित्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम हे ईश पारम न याति। जिसका सरल शब्दों में ये अर्थ और भाव है कि माँ शारदा माँ सरस्वती कहती है कि इस सृष्टि रूपी, जो भी इस सृष्टि को हम देख रहे हैं, तो इसका यह पृथ्वी तत्व, उसको एक कागज बना ले, जितने भी इस सृष्टि के ऊपर पहाड़ हैं और नदियां हैं, उनको घोल करके स्याही बनाई जाए, और फिर जितने भी पेड़ हैं उनकी डालियों की कलमें बनाई जाए, लिखने की कलमें। तो माँ शारदा कहती है कि हे प्रभु, इतने इतना साधन लेकर के भी मैं आपके गुण यदि गाने बैठूं या लिखने बैठूं, तो भी आपके गुणों का पार नहीं आता है, मैं लिखने में असमर्थ हूं। बोलो, यही अनुभव आप सभी का भी है? हाँ, यदि है तो हाथ उठाएं। हाँ, प्रभु को इतना सागर समान अनुभव किया है। हम बच्चे जानते हैं कि मेरा मीठा बाबा सृष्टि पर आए और आकर के क्या किया, हम बच्चों को अपना परिचय दिया, प्रभु ने अपना परिचय दिया, फिर मुझ आत्मा को मैं का परिचय दिया। अभी हम सभी यहाँ पर स्व के परिचय से परिचित है ना, यहाँ पर बैठे हुए, तो स्व का परिचय मिला, स्व के पिता का भी परिचय मिला, परंतु परिचय मिलना बौद्धिक स्तर पे हुआ या फिर हमने उस परिचय से महसूस भी किया? एक होता है बुद्धि के स्तर पर जानना और बौद्धिक स्तर पर उसको मानना, और मानती बुद्धि तब है जब वो बात विवेक मान्य होती है। तो हम बच्चों ने विवेक मान्य किया और बौद्धिक स्तर से उसको माना, जान करके माना। भक्ति मार्ग में मानते थे पर जानते नहीं थे। अभी हम ज्ञान मार्ग में हैं, जानते भी हैं और मानते भी हैं, परंतु इतना ही काफी नहीं होता। जानने के बाद, मानने के बाद उसको महसूस करना, अर्थात जो हमने जाना कि वो हमारे माता पिता सखा बंधु सब कुछ है। हम ब्राह्मण तो यही कहते हैं ना कि बाबा से हमारे सर्व संबंध है और एक प्रभु ही ऐसी हस्ती है जिससे हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो न साकार है न आकार है। साकार और आकार जहाँ पर है वहाँ संबंध है, माता पिता सखा भाई बहन पति पत्नी अनेकानेक संबंध देह से जुड़ जाते हैं, लेकिन बाबा निराकार है इसलिए हम उनसे जो भी संबंध जोड़ना चाहें हम जोड़ सकते हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और जो बाबा के बच्चे नहीं भी आए हैं, जिन्होंने जाना है जिन्होंने माना है, हरेक उसके साथ अपना अपना संबंध जोड़ते हुए और अपनी जीवन के अंदर उसको अपना साथी मानते हुए और उसका साथ लेते हुए चल रहे हैं। और वो सभी के साथ अपने संबंध को निभाते हैं, चाहे हम उस संबंध को निभाएं या ना निभाएं। लेकिन आप देखेंगे कि बाबा हम बच्चों के साथ अपने संबंध को बराबर निभाते हैं। जो भी बाबा हम बच्चों से वायदे करते हैं वो बाबा बरोबर निभाते हैं। हम बच्चे निभाने में ऊपर नीचे आगे पीछे या नंबरवार हो जाते हैं। तो ऐसा मीठा बाबा कि हम वायदा निभाने में परसेंटेज भी हो, फेल भी हो, फिर भी उसने एक बार ये कह दिया कि मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, फिर वो इस संबंध को अंतिम घड़ियों तक निभाते हैं, क्योंकि वो आए हैं हम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। हम जहां से आए हैं वहां का रास्ता हम बच्चे भूल गए हैं, इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को गाइड बन करके रास्ता दिखाकर और साथ में सतगुरु बन करके हम सभी को अपने मुक्ति धाम अपने घर ले जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति धाम में भी हम वापस आएंगे। इतना तो निश्चय मैं समझती हूँ यहाँ बैठे हुए सभी बाबा के बच्चों को अवश्य है, है और है ना, सभी को निश्चय, या किसी को निश्चय कम भी है? है, निश्चय सभी को है। और बड़े दिल से हम बच्चे बाबा के लिए सदैव कहते रहते हैं कि बाबा किसका है, किसका है बाबा? मेरा बाबा हा? हम सभी दिल से कहते हैं कि मेरा बाबा, और इतना हक जताते हैं कि बाबा को मेरा ये काम करना ही पड़ेगा, बाबा को मदद करनी ही पड़ेगी, बाबा मदद करो नहीं। लेकिन बच्चे कभी कभी ऐसे उनके ऊपर अधिकार और हक जताते हैं कि बाबा आपको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे बाबा हो। भक्ति मार्ग में तो हमने जाना नहीं, और न जान करके उनको कहां कहां बिठा दिया, सर्वव्यापी कह करके उनकी कितनी ग्लानी कर डाली, अपमान कर डाले। लेकिन अब हम बच्चों ने जाना, तो अभी हम बच्चे उनकी ग्लानी नहीं करते, परंतु ये ग्लानी करने का जो बीज है ना, वो हम बच्चों ने ही डाला है। बाबा कहते हैं जो कुछ भी आप संगम युग पर मनसा वाचा कर्मणा कर्म करते हो, ये सारे बीज जो पड़ते हैं, ये सारे भक्ति मार्ग के अंदर त्योहारों के रूप में, उत्सवों के रूप में, या किसी ना किसी ऐसी तिथि तारीख को लेकर के उसको धार्मिक रीति से मनाया जाता है। कैसे हम बच्चों ने बीज डाला? अब हम जब यहाँ आकर के बैठते हैं, जैसे ही बाबा के आप सभी मीठे मीठे लाडले लाडले पद्मा पदम अति अति सौभाग्यशाली बच्चों को देखते हैं, तो जिस जिसके ऊपर नजर पड़ती है, कौन दिखता है? आप कहेंगे आत्मा दिखती है। अगर आत्मा भी दिखती है तो आत्मा वो किसकी संतान है? रूहानी बाबा की, ज्योति बिंदु बाबा की। तो ज्योति बिंदु दिखता है, अर्थात बाबा याद आते हैं। और यदि बाबा को याद करते हुए अगर इन नजरों से देखते हैं, तो हर बच्चे के अंदर, हर एक के अंदर किसकी तस्वीर नजर आती है? बाबा की तस्वीर नजर आती है, क्योंकि हम बच्चों ने अपने मीठे मीठे बाप दादा को कहां कहां बिठाया है। देखो, सर्वप्रथम बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे दिल तख्त पर विराजमान हो, कहते हैं ऐसे बाबा। हाँ, कहते हैं ना। तो हम बच्चे भी क्या कहते हैं कि मेरा बाबा कहाँ बैठा है? मेरे दिल में बैठा है। फिर हम कहते हैं मेरे नैनों में भी बैठा है। हाँ, गीत भी है ना अपना, नैनों में भी बाबा, दिल में भी बाबा। फिर गीत गाते हैं रोम रोम में बाबा। हाँ, ये जो हमारे रोम रोम होते हैं ना, उसमें भी हम बच्चे प्यार में जब आ जाते हैं, अति प्यार आता है बाबा के ऊपर, तो हम बच्चे गा उठते हैं कि मेरे रोम रोम में तुम ही समाये हुए हो। जब इतना अति प्यार होता है, तब मैं आत्मा ये गा उठती हूँ कि मेरा बाबा, तब दिल से निकलता है मेरा बाबा। और ऐसे दिल से जो कहते हैं ना मेरा बाबा, उसके लिए बाबा कहते हैं कि उन बच्चों को पुरुषार्थ करने में या बाबा को याद करने में मेहनत नहीं पड़ती। जो बाबा कई बार हम बच्चों को मुरलियों में सुनाते हैं कि मोहब्बत है वहां पर मेहनत नहीं होती। यदि हमें मेहनत करनी पड़ती है तो समझ लेने का कि मेरी मोहब्बत में कुछ कसर बाकी है। यदि मुझे पुरुषार्थ को कठिन महसूस नहीं करना है, सहज अनुभव करना है, तो हम बाप दादा से ऐसी गहरी मोहब्बत करें, इतना गहरा प्यार करें, क्योंकि जो गहराई से दिल से महसूस करते हुए संबंध को प्रैक्टिकल में जुटाते हुए जो बाबा से प्यार करते हैं, उनके लिए योग कैसा हो जाता है? बड़ा सरल होता है, बड़ा सहज होता है और वह स्वतः ही योगी होते हैं। उन्हें याद करना नहीं पड़ता, उन्हें स्वतः ही याद आती है। जैसे कहते हैं ना, दो मोहब्बत करने वाले, चाहे वो पिता पुत्र हो, माँ बेटा हो, दो बहनें हो, दो भाई हो, दो मित्र हो, दो प्रेमी हो, परंतु यदि दोनों एक दो को यदि दिल से मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है? कहते हैं उनकी दिल लग जाती है, उनको दिल लगानी नहीं पड़ती, उनको प्रेम करना नहीं पड़ता, मोहब्बत उनको करनी नहीं पड़ती, लेकिन मोहब्बत क्या हो जाती है? हो जाती है। तो ऐसे ही प्रभु से तो हम नाम की मोहब्बत करते आए भक्ति मार्ग में, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारी मोहब्बत कब होती है? जब संगम युग पर बाबा आते हैं और जैसे ही हमें बाबा छूते हैं, माना बाबा हमें अपना परिचय देते हैं, जैसे ही वो परिचय हमें प्राप्त होता है और आत्मा जैसे ही जागृत होती है और आत्मा की परमात्मा से प्रीत हो जाती है, तो जो हो जाने वाली प्रीत है, वह जिसकी होती है वो स्वतः योगी बन जाता है। फिर वो बाद में आने वाले कई स्वतः योगी नहीं बनते, तो राजयोग की जब विधि सीखते हैं, आत्मा परमात्मा और योग का उन्हें जब लेसन मिलता है, तब जाकर के उनका योग लगता है। तो योग लगता है नॉलेज के आधार पर, परंतु उसमें यदि निश्चय हो जाता है तो वो सहज योगी बनता है। और यदि वो निश्चय बुद्धि नहीं होता तो मेहनत से उसे प्रभु को याद करना पड़ता है। तो योग के अंदर भी हम जानते हैं कि स्वतः योगी, सहज योगी, राजयोगी, राजयोगी का कई गलत अर्थ भी उठाते हैं कि राजयोगी माना राजा ही से प्रभु को याद, राजयोगी माना बड़े आराम से प्रभु को याद करने वाले। आराम से याद करना माना 3 मिनट की जो ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्ड बजती है ना, हाँ गीत बजता है ना, तो वो 3 मिनट के गीत में वो जो आराम से योग करने वाले जो बाबा के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में आराम करते हैं। जहां भी बैठे होंगे आराम फरमाते हैं, 3 मिनट भी वो जागृत अवस्था में जो बाबा ने हमें खुली आंखों का योग सिखाया है, ना वो आंख खुली रख पाते हैं, ना अपनी जागृति की वो स्टेज रख पाते हैं, और ना ही उस समय बाबा की उनको 3 मिनट कायम याद रहती है। शुरुआत आती है गीत बजा, इसीलिए याद में बैठना है ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, लेकिन तुरंत ही क्या करने लग जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे पहुंच जाते हैं उस शांति धाम में जो उनका बना हुआ शांति धाम है, परम धाम नहीं, जहां वो आराम से झुटके के झूले पर झुटके खाते हैं, आराम से आंखें बंद कर और आनंद लेते हैं, और गीत पूरा होने पर उनको लगता है कि हम तो एकदम अतिंद्रिय सुख के अनुभव को करके आए। लेकिन वो अनुभव काय का होता है, किस बात का होता है, निंद्रा का होता है, नींद का होता, सुस्ती का होता। परंतु ये 3 मिनट भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, हम इस 3 मिनट के अंदर स्वयं को सुस्त से चुस्त बना सकते हैं। ये 3 मिनट के अंदर हम एकाग्रता को अपनी स्थिति पर ला सकते हैं। ये 3 मिनट क्या मिलती है, हम प्रभु के मोहब्बत का अमृत पान कर सकते हैं, हम उसके सर्व संबंधों का रस ले सकते हैं, और इस 3 मिनट के अंदर हम 3 जन्मों की यदि ऐसी बीज रूप की स्थिति में योग करें तो 3 जन्मों की कमाई कर सकते हैं, इतनी हमें प्राप्ति होती है। लेकिन क्या करें, बाबा भी किसी को दोष नहीं देते, माया को भी दोष नहीं देते बाबा, लेकिन स्वभाव और संस्कार, तो स्वभाव और संस्कार के कारण हम इस बात से विस्मृत हो जाते हैं, तो ये सारा खेल स्मृति और विस्मृति का। इसलिए हमें स्वयं को बार 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 स्वमान की स्मृति दिलानी पड़ती है कि मैं कौन हूं। ये तो पता है कि मैं इस भ्रकुटी के बीच में चमकने वाला एक दिव्य सितारा हूं, और ये दिव्य सितारा न सिर्फ भ्रकुटी के बीच चमकता है, लेकिन ये दिव्य सितारा परम धाम में भी जाकर के बैठ जाता है, और बहुत हमें शांति का अनुभव भी कराता है। तो स्वमान हमारे बहुत सारे हैं, और इन स्वमानों में रहने के लिए हमें माया को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है जितना हम बाबा को वो जो हैं जैसे हैं वैसा उनको पहचानते हैं। यदि माया को भी हमने वो जो है वो जैसी है यदि यथार्थ रूप में उसको नहीं पहचाना तो वो हमें कभी भी धोखा दे देती है, किस भी घड़ी वो धोखा दे सकती है और अवश्य धोखा देगी। तीनों काल में वो धोखेबाज है। ये माया का प्रथम परिचय है कि माया माना ही धोखा, विस्मृति। विस्मृति का नाम है माया और विस्मृति आती है देह अभिमान से या एकाग्रता के टूटने से या अपना ध्यान बाबा से हटने से। अगर हम सेकंड के लिए भी चूकते हैं तो माया हमें अपना बना लेती है, खींचती है अपने तरफ। वो एक रस्सी वाला गेम है, आप लोगों को पता भी होगा, बचपन में आप लोगों ने सभी ने वो गेम खेली भी होगी। एक लंबी रस्सी लेते हैं, एक तरफ एक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप होता है, फिर दोनों मिलकर के रस्सी को खींचते हैं, फिर रस्सी जिसके तरफ खींच कर आ जाती है वो ग्रुप जीत गया। हाँ, ये गेम खेली है ना सभी ने। हाँ, सभी अनुभव करते हैं। बराबर यही गेम माया संगम युग पर हम बच्चों के साथ खेलती है। जितनी भी गेम बचपन में खेली ना, ये सारी गेम्स माया हम लोगों से खेलती है। छुपा छुपी का खेल भी होता है। हाँ, आंखों पे पट्टी बांध करके क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो माया भी क्या करती है, आंखों पे पट्टी बांध देती है, फिर कहती है अभी पकड़ो। किसको पकड़ो? अपने बाप दादा को, अपने ईश्वरीय परिवार के, अपने भाई बहनों को। लेकिन होता क्या है, वो धोखा दे देती है। तो आप देखेंगे एक पांव एक टांग से लंगड़ा भी बना देती। हाँ, बचपन में एक टांग से एक पत्थर रख करके, हाँ, अक्सर लड़कियां खेलती हैं, पत्थर को आगे आगे लेके जाते हैं। तो ऐसे कई गेम्स आप देखेंगे, सब माया हमारे साथ खेलती है। चलो मैं भी आपको एक बैठे बैठे सिर्फ मुख से बोलने की गेम कराती हूँ। तैयार हैं आप सभी? पीछे वाले तैयार हैं? पीछे वाले ऐसे नहीं समझना कि यहाँ तक तो ध्यान जाएगा ही नहीं, तो हम आराम से एक दो झुटका खा लें। हाँ, क्योंकि सभी नाश्ता करके आते हैं ना, तो क्या होता है, थोड़ा भारी हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि अमृत वेले उठे हुए होते हैं और फिर थोड़ा ज्यादा ही संख्या में कमरे में या कहीं पर रहते हैं तो उठना जल्दी पड़ता है स्नान के लिए, तो फिर अभी थोड़ा भारी हो जाते हैं भोजन के नाश्ते के बाद, तो फिर हेवी हो जाते हैं, तो थोड़ा नींद भी आती है। लेकिन थोड़ा बीच बीच में हमें स्वयं को जागृत करने के लिए क्या करना पड़े, हाँ, कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी पड़े। अब यहाँ पर उठ करके हाथ लंबे करो, पैर लंबे करो या कुछ करो, वो तो शक्य नहीं है, इसीलिए मुख की गेम करते हैं। सभी बाबा की याद में हो? हाँ, पीछे वाले हाथ नहीं दिखाई पड़ते आप लोगों के? हाँ, इस तरफ। वाह वाह बाबा वाह, और वाह आप बाबा के मीठे मीठे लाडले बच्चे, वाह। अच्छा, अभी ध्यान से सुनते जाना। हाँ, आपको इस गेम के अंदर सिर्फ बोलना है मेरा बाबा। सहज है ना ये तो बोलना? बिल्कुल सहज, बराबर। और सभी बोलना, और जिनको सुस्ती होती है नींद आती है या थोड़ा भारीपन लगता है, वो तो जरूर बोलना और जोर से बोलना, तो आपकी नींद भाग जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जब दिल से कहोगे क्या तो क्या होगा, नींद भाग जाएगी। हा? अच्छा, हमें आकर के परिचय किसने दिया, ज्ञान का सागर कौन, सुख का सागर कौन, आनंद का सागर कौन, गुणों का सागर कौन, शक्ति का सागर कौन, दुख का सागर कौन, अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप जागृत अवस्था में रहना। अभी क्या कहे इसको, बाबा की मदद नहीं मिली पास होने में, ऐसा कहे हाँ, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। चलो फिर से करते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, शांति का सागर, अशांति का सागर। अभी थोड़ा सावधान हुए हाँ, थोड़ा सावधान हुए। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। स्वर्ग में कौन ले जाता, मुक्ति में कौन ले जाता, घर में कौन ले जाता, जीवन मुक्ति कौन ले जाता, जीवन बंध में कौन ले जाता, नहीं वो रावण ले जाता, ठीक है। फ्रेश हुए सभी? अच्छा, अभी हम सभी बच्चे जब ऐसे दिल से कहते हैं ना, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, तो पता है क्या होता है, वतन तक बाबा को हमारी यह आत्मा की, दिल के प्रेम की जो आवाज है ना, उस तक पहुंचती है, यानी उसके दिल तत्व पर पहुंचती है। और जब उसके तक पहुंचती है तो बाबा क्या करता है, हम बच्चों के ऊपर ऐसे वारी जाता है। हाँ, वारी जाते तो ऐसे करते हैं ना, हाँ आप लोग करते हो, हाँ आप लोग बाबा के ऊपर वारी गए, हाँ करो देखूं, वारी जाओ बाबा के ऊपर, हाँ सभी ऐसे वारी जाते हैं। हाँ? अच्छा, बाबा को हम सभी प्यार करते हैं, हाँ कितना प्यार करते, बहुत, ऐसे नहीं बहुत, माना कितना होता है, जितनी बांह फैला सको उतना अपनी बाहें फैलाओ। हाँ, तो बाबा को हम बच्चे क्या करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मेरे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हो। बाबा की अव्यक्त वाणी के नीचे जब याद प्यार देते हैं बाबा, तो हम बच्चों को कितने टाइटल से नवाजते हैं बाबा। हाँ, अगर वो टाइटलों की लिस्ट निकाली है कभी आप लोगों ने, हाँ अभी जाकर के फुर्सत से सारी अव्यक्त वाणियों के नीचे जितने टाइटल्स है ना, वो टाइटल्स की लिस्ट निकालना, आप देखेंगे हजारों के ऊपर आपको बाबा ने टाइटल दिए हैं। इतना प्यार कोई करेगा, हाँ लौकिक माता पिता ने कभी इतने टाइटल दिए नहीं दिए, तो ये टाइटल किसने दिए, मेरे बाबा ने। किसको दिए, हम बच्चों को। हाँ, तो बाबा को कौन प्रिय है, अभी बोलते नहीं हम बच्चे, हाँ बाबा को कौन प्रिय है, हम बच्चे। स्वर्ग में कौन चलेंगे, हम बच्चे। अपने घर कौन चलेंगे, बाबा के साथ कौन चलेंगे, हम बच्चे। तो बाबा ने, बाबा भी हम बच्चों पर वारी जाते हैं, हम बच्चे बाबा के ऊपर वारी जाते हैं। और ये वारी जाना माना समर्पित हो जाना, समर्पित होना माना समझते हो ना, हम तन से मन से धन से हम बाबा को क्या कहते हैं, बाबा जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है, कहते हो सभी ऐसे, हाँ मेरे साथ साथ कहना, मैं पहले बोलूंगी फिर आप बोलना, तन तेरा मन तेरा धन भी तेरा मन तेरा बुद्धि भी तेरी संस्कार भी तेरे। अब ये बात पक्की याद रखना, जब बाबा का सब कुछ करेंगे तभी हम कहेंगे कि हम बाबा के ऊपर वारी गए, क्योंकि मन भी हमारा बाबा ने चलना सिखाया है। हम तो नेगेटिव पॉजिटिव और ज्यादा प्रतिशत हम नेगेटिव ही चलाते थे, मन मत रावण मत अपनी मत पर मत शास्त्र मत, हम उस पर ही चलते रहे आज तक, बराबर। अभी हमें क्या मिलती है, आप लोग बोलते नहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद नहीं मेरा अच्छा लग रहा है सुनना। अभी हम किस मत पर चल रहे हैं, श्री मत पर। तो अभी बाबा ने हम बच्चों को श्री मत दी है श्रेष्ठ बनने के लिए, तो हमने सब कुछ बाबा को मेरा जो था वो तेरा किया, मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, परंतु मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। परंतु कई बार हम बच्चे क्या करते हैं कि मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, फिर हम बाद में कहते हैं मेरे को हाथ मत लगाना, भूल जाते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं मेरे को हाथ मत लगाना। कहां, जब हमें मेरा बच्चा लौकिक, मेरा पोतरा पोतरी नातू नाती, हाँ मेरा संबंधी जो भी हो, फिर पति पत्नी भाई बहन जो भी हो, हाँ उसमें हमारी बुद्धि जाती है, ममत्व जाता है, ममता जाती है, हाँ देह का वो संबंध का जो रस है वो चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय हम बाबा से वापस ले लेते हैं। तो ये वापस ले लेना, इसको बाबा क्या कहते हैं, अमानत में ख्यानत डालना। जब बाबा को दे दिया तो हम हो गए ट्रस्टी, जब हम ट्रस्टी हो गए तो फिर ये सारी अमानत किसकी हो गई, बाबा की हो गई। फिर हम अगर उसको लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अमानत में ख्यानत। इसलिए बाबा से ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, भले संबंध निभाओ। संबंध निभाने का मतलब ये नहीं कि हम दिन रात जैसे पहले देह के भान में देह सहित देह के संबंधों को याद करते रहते थे, देह की लागत में फंसे रहते थे, देह के संबंधियों में लगाव और झुकाव रहता था, ऐसे ही हमारा लगाव और झुकाव बना रहे और हम समय प्रति समय इन देह और देहधारियों के संबंधों में चले जाएं या उन देहधारियों के बने परिवार समाज और उनके जो भी बने हुए रिश्ते नाते हैं, जो भी रस्में रवाज हैं, हम उनके अंदर फिर से अपने को खींच करके ले जाएं, तो बाबा कहते हैं नहीं, निमित्त बन करके चलना है, निभाना है, परंतु उसमें लगाव और झुकाव में झुक नहीं जाना है, न्यारा रहना है और प्यारा बन के भी चलना है। बाबा कैसे न्यारा भी है, लेकिन हम सभी बच्चों का कितना प्यारा है, जो हम एक एक बच्चा बच्ची क्या कहते हैं, मेरा बाबा, क्या कहते हैं, मेरा बाबा। तो इसीलिए जो कुछ भी पहले जहां जहां भी हमने मैं कहा, वो मैं को अभी बदल देना है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हाँ, पद बहुत सारे पद हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या 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 पद सभी को प्राप्त है। हाँ, पढ़ाई करते हैं इतनी, तो पढ़ाई के अनुरूप उनको पदवी भी मिलती है, तो हमको वो पदवी कितनी याद रहती है। पदवी याद रहे वो कोई बुरा नहीं है, परंतु पदवी का गर्व हो, अभिमान नहीं होना चाहिए, फिर वो अभिमान में मान अपमान भी याद नहीं रहता, किसको सम्मान देना, किसको रिगार्ड देना, ये भी याद नहीं रहता, फिर हम किसी को जलील करते, किसका अपमान करते, फिर रोब में बात करते, जोश में बात करते, तो ये जो हमारी चलन होती है वो सारी चलन गलत हो जाती है। फिर मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, अपने गुण और अपनी विशेषता और अपने कर्मों के ऊपर भी अभिमान करना, और उस अभिमान से फिर बात करना, और उस अभिमान से बात करते दूसरों के दिलों को दुखाना, दिलों को तोड़ना, किसी के स्वमान को हानि पहुंचाना, हाँ, ये सब करते आते हैं ना। लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि ये सारा मैं बदल दो, अभी क्या करो, सारे रूहानी स्वमान और सारे रूहानी कर्म और जो श्रीमत मिली है उस श्रीमत के आधार पर मैं को चलाओ। मैं ऊंचते ऊंच बाप की संतान, ऊंचते ऊंची आत्मा हूँ, मैं रॉयल फैमिली, स्वयं प्रभु की फैमिली की सदस्य हूँ, तो मैं रॉयल आत्मा हूँ। और मैं क्या बनने वाली हूँ, मनुष्य से देवता बनने वाली हूँ। और स्वमान की लिस्ट भी देखो कितनी लंबी चौड़ी है, तो मैं को वहाँ परिवर्तन करो। फिर मेरा, बहुत सहज बातें हैं, बाबा ने बड़ा सहज ज्ञान दिया है, फिर मेरा का भी ऐसे परिवर्तन करो, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे संबंधी, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी ऑफिस, मेरा बंगला, मेरे कपड़े, सब मेरा मेरा मेरा, मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव इतना अच्छा, मेरा स्वभाव ऐसा, मेरा स्वभाव वैसा, मेरे ये संस्कार, मेरे वो संस्कार, मेरी वाणी ऐसी, मेरी वाचा ऐसी, ये जो मेरा मेरा कहके, ये जो अभिमान से, देह अभिमान से ये जो बातें करते हैं, ये सारा मेरा परिवर्तन कर दें, सारा नकारात्मकता को सकारात्मकता में ला दें। माया ने हमें उल्टा बना दिया, अभी हम सुलटे बन जाएं, अभी हम एक ही बोली बोलें जो बाबा की बोली है। हाँ, तभी कहते हैं ना, हम ब्राह्मणों की भाषा निराली है, हम ब्राह्मणों की भाषा हम ब्राह्मण ही जानते हैं, तो हम अपनी बोली, जो बाबा की बोली वो मेरी बोली, जो बाबा की भाषा वो मेरी भाषा, तो एक ही बोली बोले कि मेरा बाबा वाणी से जब बोले तो बाबा के ज्ञान की मीठी मीठी अमृत वाणी बोले। और बाबा ने जैसे स्वमान में स्थित किया, ऐसे हम अपने स्वमान में और अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। तो चलें, अभी समय पूरा हो रहा है, तो अभी हम 3-4 मिनट के लिए अपने ऊंचे से ऊंचे स्वमान में स्थित होते हुए और मेरे बाबा को, हाँ, अपने प्रिय बाबा को, अति प्रिय बाबा को याद करते हुए हम वतन में बाबा के साथ रूरिहान करें या फिर बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के शांति के स्वधर्म में स्वयं को शांति के अंदर ले जाकर और शक्तियों का स्टॉक अंदर में जमा करें। पर याद रखें, आगे बैठने वाले, बीच में बैठने वाले और पीछे बैठने वाले, इस 3 मिनट में एकाग्र रहते हुए जागृत अवस्था में कितना भी माया आंखें बंद कराने की कोशिश करे, आंखें बंद नहीं करना, आंखें खुली रखना। और देखो कितना बड़ा बाबा आपकी नजरों के आगे है, तो दिव्य नजर जो मिली है बुद्धि की, उसमें भी बाबा को देखो और स्थूल नेत्रों से भी मेरे बाबा को देखो और फिर बाबा को याद करें। कौन मेरे बाजू में यहाँ आया, वहाँ आया, आगे कौन, पीछे कौन, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, कहीं भी ध्यान मत दो, बस एक बाबा को देखो, एक बाबा को याद करो। और हम 3 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह स्वतः योगी बनके बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, मेरा तो बोलो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो दूसरा ना कोई, बस इसी धारणा में हम सभी बैठेंगे और क्लास को पूर्ण करेंगे।
मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई,
thank you।
हमें रंग है देता, सीने का हमें रंग